ओम शांति। संगम युग पर हमें बाबा मिला, बाबा का ज्ञान मिला, सेंटर मिलता है और साथ साथ प्यारा सा ब्राह्मण परिवार मिलता है। और ये ब्राह्मण परिवार जो होता है, इसका जो आपस में स्नेह होता है, ये स्वार्थ से परे वाला स्नेह होता है, है ना। हमारे ब्राह्मण परिवार में भी किसी एक भाई बहनों के घर में अगर कोई उतराव चढ़ाव वाली बात आती है तो हम सभी मिलकर दुआएं देते हैं कि ये अपनी इस जीवन की परिस्थिति से जल्दी पार हो जाएं, है ना, इनको बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिले, ऐसे सभी सोचते हैं ना, है ना। ब्राह्मण परिवार के लिए भी समय प्रति समय हम सब दुआएं देते रहते हैं। कुछ दिन पहले हमारे ऐसे ही एक ब्राह्मण परिवार जो कि अशोक राणा भाई जी हैं, निर्मला बहन राणा, इनके परिवार के भी एक उतराव चढ़ाव वाली परिस्थिति का वीडियो हम सबके समक्ष आया था। सभी जानते हैं वो वीडियो, सभी जानते हैं, हाथ खड़ा करेंगे, सभी जानते हैं, है ना। तो बहुत विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी बैकग्राउंड जानते हैं। ये एक ऐसा अनुभव था जहां भावनाएं भी थी लेकिन आत्मिक स्थिति की एक समझ भी थी, है ना। ये ऐसा क्षण था जिस क्षण ने परमात्मा को प्रत्यक्ष भी किया, क्योंकि आध्यात्मिक मैच्योरिटी, है ना, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के साथ इन्होंने अपनी उस जीवन की परिस्थिति को बड़े प्यार से स्वीकार किया, उसे फेस किया और भगवान के दिए हुए ज्ञान, जो सबसे अच्छा सबसे ऊंचा ज्ञान है, उसका स्वरूप बनकर अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने। और इतिहास में शायद ये पहली बार ही था जब ऐसे इच्छा मृत्यु की स्वीकृति मिली कोर्ट के द्वारा, तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसे और कई माता पिता हैं जो ऐसे चाहते हैं कि हमारे बच्चे अगर बहुत सारी पीड़ा सह रहे हैं तो इस पीड़ा से अभी उन्हें मुक्त करने का समय है। इन्होंने अपनी उस इच्छा को एक बहुत सुंदर रिजल्ट दिया और बहुत शक्तिशाली स्थिति बनाते हुए उस परीक्षा को पार किया। तो हमने छोटा सा वीडियो देखा था, है ना, और उसके बाद फिर सभी को, सभी ने मन ही मन ब्लेसिंग्स भी दी होगी, लेकिन ये मन में रहता है भले दूर ही हो। आप सभी भिन्न भिन्न भारत के या विदेश से आए हुए भाई बहने हैं, लेकिन उस परिवार के प्रति आपके मन में भी उस समय वो योग का सहयोग देने की भावनाएं भी आई होंगी। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि समक्ष ही बैठकर उनके अनुभव को सुना जाए। तो हम सबके मध्य अशोक भाई जी राणा हैं, जो हरीश भाई राणा जी के लौकिक पिताजी हैं, तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना अनुभव हम सबके बीच में साझा करें कि किस हिसाब से आपने बाबा की शिक्षाओं को धारण करते हुए, उस आत्मिक पाठ को पक्का करते हुए, आपने कैसे अपने आप को मजबूत रखा और कैसे इस परिस्थिति से पार हुए। मैं अनुरोध करती हूँ अशोक भाई जी से कि आप अपना अनुभव हमारे समक्ष रखें।
ओ अनुभव तो बहुत सारे हैं। मैं लगभग 2010 में मैंने पालम से हरीश दीदी हुआ करती थी, उनसे साप्ताहिक कोर्स किया। एक फोटो लगा होता था कृष्ण का जो सामने लगा हुआ है, पीछे कलयुग में वो लात मार रहा है, परंतु वो सेंटर दूर था और वो उन दिनों उन दीदी का भी तबादला हो गया। फिर मैं मधु विहार दिल्ली में हम रहते थे, वहां पर मधु विहार में सेंटर बना, वहां कंटिन्यूज मैंने वहां मुरली सुननी और जो भी सेवा होती थी तन से वो कर। उसके बाद हम वहां से आगे गाजियाबाद में हम यहाँ आए। पहले तो सेंटर ढूंढा, पहले चला गया मैं मुरादनगर, फिर मुरादनगर भी दूर था, फिर मैंने किसी से बच्चों से डलवाया गूगल में, फिर मोहन नगर सेंटर में, फिर हमारा सेंटर यहाँ खुल गया गुलमोर सोसाइटी में। मेरा ये नियम आज से नहीं, 2000 लगभग मैं जाता भी पहले नहीं जाता था, 2012 से पहले भी मैं एक दो बार दो चार बार, परंतु बाबा कहता कि हाँ जी। तो उसके बाद ये बहुत लंबी कहानी है, हम दीदी ने बता ही दिया कि ऐसे ऐसे है, आपको पता भी है, ये सब बाबा का कमाल है। और बाबा ने मुझे वो जैसे कहते हैं कि अमृत वेला और मुरली, कभी कभी परिस्थितियों के कारण, क्योंकि रात को उसको 3 फुट पाइपें डली हुई थी शरीर में। तो इससे पहले तो हम शुरुआत करते हैं हम कैसे दीदी को, एक बार 2023 में हमारी युगल कहती कि आप प्रधानमंत्री को बोलो, राष्ट्रपति को बोलो, और अब हम दोनों बुढ़े हो रहे हैं, हमारे से सेवा भी नहीं हो रही है, और आप एक बार। तो पहले तो मैं चुप रहा, फिर मैंने कहा ये काम होना संभव नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे हो सके। फिर मैंने बाबा को, मैंने कहा बाबा मेरा मार्गदर्शन करो अमृत वेले, जैसे हम पुस्तकों में बाबा से पूछता हूं, कुछ पॉइंट लिख लेता हूं। उसके बाद मैंने ये बात दीदी तक पहुंचाई, मैं कहा दीदी हमारी युगल ऐसे कह रही है, ये बात भी फैक्ट है कि मेरी भी 64 वर्ष की उम्र हो रही है, इनकी भी लगभग 60 वर्ष के लगभग हो रही है, और एक माँ के मन में ये संकल्प उठ रहा है। तो वो संकल्प मैंने दीदी तक पहुंचाया, जो आपके समक्ष बैठी है हमारी लवली दीदी। तो इन्होंने एक वकील मनीष जैन जी को भेजा, हाई कोर्ट तक वो मामला चला, सुब्रमण्यम जज थे, उन्होंने जजमेंट दी कि इसको लाइफ सपोर्ट नहीं है, वो खारिज हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए हम, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा ने, जिसे कहते हैं ना बाबा किसी को नियमित बनाता, मैं आज भी उन बहनों का नहीं जानता हूं, परंतु वो कोई CMO हैं, कोई इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर हैं, इंटरनेशनल लेवल की अधिवक्ता हैं, जो अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि कब आ रहे हो आप, हमने आना है घर। तो ये बाबा का कमाल, उन्होंने भेजा उस तक, वहां तक। फिर वो बहने घर आई, उन्होंने हमारे सैनों से लिया, फिर है तो हमारे परिवार के लिए ये बहुत बेहद कठिन कार्य, आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे शायद इस भारत देश में किसी माता पिता ने ऐसा नहीं किया होगा। परंतु परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हमारे परिवार की 4 इसमें बेटी छोट, उसकी शादी हो गई, बेटा छोटा है, ये माँ है, ये इनका ही संकल्प था। तो वो चलता रहा कार्यक्रम। चीफ ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी पहले हमें 3 ऑप्शन दिए, परंतु वो भी हमें, जिसे कहते हैं कि हम उससे भी सेटिस्फाई नहीं थे। उसके बाद ये फिर दोबारा हमने ये पटिशन डाली, परंतु वो वकील वो जज हमें मार्गदर्शन देते रहे, उसमें बहुत सारे हैं, डॉक्टर रूप गुलसानी जी हैं, वैसे नाम तो क्या लेने सबके, परंतु जिन्होंने हमारा रात दिन हर प्रश्न का उत्तर दिया, हर बात पे, मतलब जिसे कहते हैं कि बाबा ही भेज रहा होगा उनको, मैंने बोला भी उनको, मैंने कहा परमात्मा का ही कृपा होगी जो आपको संकेत दे रहे हैं। और जैसे बाबा की कुछ शिक्षाएं हैं कि सबको प्यार से, और जैसे बाबा हम घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ खाने के लिए भी रास्ते के लिए घर तक, तो हम तो कौन होते हैं, बाबा करवाता है। दादी भी बोलती है कर्ण करावन आप पे आप है, वो करवा रहे हैं, हम तो नियमित है। उस आत्मा का पार्ट हमारे साथ, शायद किसी का देना HBOT हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, शायद मेडिकल विंग के बैठे होंगे वो, इलेक्ट्रिक थेरेपी, मैग्नेटिक थेरेपी, पता नहीं कितनी थेरेपियां दी, देसी इलाज कराया, उसमें योगेंद्र रस, चिंतामणि रस, मंगल रस, 2 किलो दूध लाना, खोया बनाना, सिर में बांधना, कोई होश नहीं आई। परंतु 2023 में डॉक्टर ने, जो हमारी न्यूरो की थी, वर्ल्ड फेमस थी, और जानते भी होंगे शायद, एक बड़ा फेमस ही रिटायर्ड AK बनर्जी प्रोफेसर एम्स के थे, उन्होंने SBOT की एडवाइस की थी, HBO हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी होती है, वो भी दी हमने मीना। उसके बाद आया तो था वो, तो फिर वो बैक चला गया, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद जो दूसरी हमारी न्यूरो की डॉक्टर थी, उन्होंने बोला, मैंने कहा अब आप इसका MRI के लिए भी मना कर रहे हैं, क्या कारण है बताओ तो सही, हमें कोई बात नहीं, हमारा फर्ज है सेवा करना, हमारे से जितना होगा हम करेंगे। कह रहे इसकी जो शरीर की सिर की नसें हैं ना, बहुत पतली होती हैं, वो सूख गई हैं, और जैसे पेड़ सूख जाता है वैसे ही, तो इसकी रिस्पॉन्डिंग जो है बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि 100% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसको भारत सरकार ने भी दिया और दिल्ली सरकार के उसमें। उसके बाद हम उसका प्राइवेट ही ट्रीटमेंट करते रहे, परंतु कब तक, उसको पेट में पैक्सेट डला हुआ, वो आपको पता है फुल पैक्सेट विल्सन कुक कंपनी का कितने का डलता, 11,000 का वो आता था, 8,000 डालने का लेते, क्योंकि ये कोर्ट ने जब हाई कोर्ट से खारिज हो गया था तब उन्होंने बोला था कि इसको लाइफ सपोर्ट नहीं है, तो वो इंटरनेशनल हमारी रश्मि नंद कुमार वकील हैं, और डॉक्टर धोनी मेहता जी लीगल पॉलिसी की वो हैं, फिर यूनियन ऑफ इंडिया की भी वो चली, तो वो ASG जो होती है एडिशनल सोलिसिटर ऑफ जनरल, 2 बार कॉन्फ्रेंस हुई हमारी, फिर वो हमारे घर आई, मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा आपकी अंतरात्मा जो कहे वो आप स्टेटमेंट दे दें, कोर्ट में उन्होंने स्टेटमेंट देनी थी। परंतु मैं कहता हूं जब से मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हूं, मुझे वो इटर्नल पावर और अमृत बेले, जैसे बाबा टचिंग कराता कैसे क्या करना, वो बाबा को बोलता हूं और बाबा मेरे से करवाता। मैं कौन होता हूं, आज भी मुरली में बाबा ने बोला मैं और मेरा, मैं नहीं बाबा, मतलब अशोक कर रहा है या मैं आत्मा जो भी है, तो वो जैसे जैसे करते वैसे वैसे लोग मिलते गए, अपने आप घर आते गए, पहले मेरे को, क्योंकि मैं फोन नहीं उठाता हूं वैसे बिना नाम से, तो उसमें मैसेज आना कि अशोक भाई आप ये फोन उठा लेना है, ये है, तो इसमें हमारे ताज परिवार के भी जो HOD हैं, 5-6 बहनें हैं, वो भी सारी बहनें जुड़ी हैं अभी, उन्होंने बोले किसी चीज की चिंता करने की बात नहीं है, जो भगवान करेंगे वो ठीक करेंगे, और उनको अमृत वेले में उनको भी गुड मॉर्निंग करता, तो वो उसमें 1-2 अमृत वेले में उठने वाली हैं जो कि हमारी वो होती। तो ये बाबा का कमाल है, वो किसके घट से कैसे करवाता है ये मुझे नहीं पता, उन्होंने किस किस को डॉक्टरों को ऐसे नहीं, मतलब कम से कम ऐसे ऐसे उनको नियमित बनाया कि अभी आपने देखा होगा उसको गुलाबों की फूल की सही है, वो एम्स में प्रोफेसर सुषमा भटनागर जी, हालांकि वो पैसे के लिए, मैं कह जी नहीं पैसे, उन्होंने जब हमारी उसकी आंखों की हमने पूछा भी इसका डोनेट क्या क्या कर सकते हैं हम, तो हालांकि इन्होंने क्वेश्चन किया कि आंखों का हो गया, उन्होंने विशेषज्ञ आई चेक किया उन्होंने, तो कह रहे इसके आंखों का कोरनिया हो सकता है, हार्ट का बल्ब ठीक है वो भी हो सकता है, और कुछ बोन्स हैं, वो हमने डोनेट की भाई चलो जो भी है किसी का तो जीवन 2-4 का इससे चल सकता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ देखो कैसे आना हुआ, अब बात तो मेरे को उतना बोलने में नहीं आता है, क्योंकि सच बात है बेटे ने मना किया कि कुछ नहीं बोलना मीडिया, आपने शांत रहना, परंतु फिर भी चलो आपने यहाँ बुलाया और बाबा के घर में बैठे हैं और ब्राह्मण कुलभूषण है, ये सारा कमाल आपकी शुभ भावनाओं शुभ कामनाओं, जितना भी ब्राह्मण परिवार है, आपने श्रीकांत जी भाई जी से भी 8-9 साल पहले ज्ञान सरोवर पे ही मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने भी बेचारों ने चलो जो भी हुआ डॉक्टर भेजा हमारे घर में, परंतु वो ये था कि उस आत्मा का सेवा का पाठ लिखा था, किसी से लेना था किसी को देना था, तो वो पाठ पूरा हुआ और ऐसे ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, परंतु मेरा अपना ये कहता है कि हर इंसान को चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, बाबा कहता है तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं 100 कदम आपका सहायता करता है और बाबा करता है, यही मेरा अनुभव है। और हम इसके साथ उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्यनाथ योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने डीएम साहब को, जिला प्रशासन और उनकी टीम को घर भेजा, हालचाल पूछा और वहां से भी जो भी है कुछ सहयोग मिला। और साथ में हम जितने भी 3 जिलों के सीएमओ हमारे घर आए, पहले वो ले जाना चाह रहे थे मेरठ डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, नोएडा डिस्ट्रिक्ट, हमने सबको मना किया, अभी एम्स का बोर्ड बैठा, उन्होंने कोर्ट में वो स्टेटमेंट दी, उसके बाद वो माननीय न्यायमूर्ति जो ये परदी वाला जी ने और विश्वनाथन जी ने ये जजमेंट बाबा ने उनके घट में बैठ करके मानवीय हित के जो निर्देश दिए, जो हरीश जैसे पता नहीं कितने बच्चे इस देश में हैं, उनका भी शायद इतिहास में ये पहला ही केस होगा जो कि ये हुआ है। हमें दुख तो बहुत है, परंतु खुशी से बात की है कि इससे कईयों का भला हो जाएगा। ओम शांति। बाकी ये दीदी का ही कमाल था, सबसे पहले ये आई थी, फिर जब विदाई हेम्स ले जाना था तो हमारी रूपा दीदी आपके समक्ष बैठी हैं, इनके तो वीडियो भी वायरल बहुत वो हुआ कि 50,000 लोगों ने लगभग देखा होगा। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जो भी ब्राह्मण कुलभूषण बैठे हैं, इनकी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, और भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने तन से धन से अपनी शुभ भावना शुभकामनाएं हमारे साथ रही, जो आज ये सफलता का नतीजा है। इसमें हमारे श्रीकांत भाई और इनकी जो ये स्पार्कलर टीम है, तो मेरी तो कल ही बात हुई उनसे, आज सुबह हुई, तो उन्होंने बोला उनका भी ये सारा योग का प्रयोग जिसे कह लें, जैसे योग का प्रयोग जो है हमारा सफल हुआ। और परमात्मा सबको तंदुरुस्त रखे, सुखी रखे और सभी अपने मन वचन कर्म से एक रहे, और कोई हमारे से भी भाई उस आत्मा के लिए हम बैठे हैं आपके सामने, क्योंकि वो भी एक गरिमापूर्ण या सम्मान का कार्य उसने किया, पर उसकी ये सब आपकी शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का एक कमाल है। धन्यवाद। ओम शांति। ये माँ है, इनके संकल्पों की सिद्धि पूरी हुई, और इस माँ के ही जब वो एक दिन रोने लगे, मेरे को ये खुद रोक रहे थे, परंतु मेरा गला घुट जाता था, परंतु अब तो उस आत्मा का साफ किताब शरीर, उसके लिए दुआएं दें कि अच्छे घर में जाए, वो बाबा का बच्चों का ही वो हो, उसमें श्रीमत मिले उसको, बाप की मुरली सुनने को मिले, ऐसे घर में जाए सारे सुख। तो इस माँ की सिद्धि संकल्पों के, कहते हैं माँ तो माँ ही है, तो जगत जननी होती है माँ, तो मैंने कहा ये आपकी एक संकल्प आपका था, और कैसे कैसे बाबा ने नियमित किस किस को बनाया। तो विदाई करते वक्त रूपा दीदी ने कुछ अपने मुखारविंद से शब्द कहे, शायद सुने, परंतु मीडिया वाले कुछ शब्दों को जैसे मतभेद उल्ट पुलट करके बोल देते हैं, चलो उनका भी भला हो भाई। ओम शांति है।
बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई जी का। आप एक पिता हैं, लेकिन साथ साथ आप एक पक्के ज्ञान युक्त, योग युक्त और धारणा युक्त बाबा के बच्चे हैं, इसलिए इतनी हिम्मत और साहस के साथ और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के साथ आपने वो बात को फेस भी किया, और साथ साथ आज उस सारे अनुभव को रखते हुए भी आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, तो आपके उस साहस को हम सभी नमन करते हैं। उनकी हरीश भाई जी की माता जी भी हम सबके समक्ष हैं, और वो दोनों दीदियां भी जिन्होंने इनको इतना साहसी बनाया, सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया लेकिन ऐसी परिस्थिति में इस परिवार का साथ भी दिया, क्योंकि ज्ञान देना तो आसान होता लेकिन साथ देने वाले कम होते। तो ऐसी हमारी दीदियां भी हैं जो इस परिवार के साथ उस समय खड़े रहे, और उस सेंटर का ब्राह्मण परिवार भी साथ में था। तो हमारे समक्ष रूपा बहन है, इनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप कह रहे थे कि सबसे माफी मांगते हुए और सबको माफ करते हुए आप अगली यात्रा पर जाएं। आपने तिलक द्वारा उनकी आगे की यात्रा को और अच्छा बनाने के लिए दुआएं दी, तो हम आपका भी अनुभव अभी सुनना चाहेंगे रूपा बहन।
ओम शांति। ये बाबा की कमाल है और ड्रामा की कमाल है कि केस तो चल रहा था बहुत समय से, लेकिन जैसे बताया भाई साहब ने कि हाई कोर्ट में जाकर के ये कैंसिल हो गया था, फिर कुछ आत्माएं इसमें निमित्त बनी, वकील और डॉक्टर्स की, प्रोफेसर्स की, और ये केस आगे गया और कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने के लिए भी समय चाहिए। तो ये कुछ देशों में ही नियम है जिसमें एक भारत भी शामिल हो गया है, और ये भारत का पहला केस है। तो जिस दिन हम हरीश भाई से मिलने के लिए गए, जाते पहले भी थे लेकिन शिवरात्रि चल रही थी, प्रोग्राम हो रहे थे, तो परिवार कह रहा था कि झंडारोहण करने के लिए आना है, लेकिन उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया और फिर उसमें बिजी हो गए। फिर आपको पता है मीडिया भी अपनी सेवा करती है, तो गुरुवार था उस दिन, और शनिवार को हरीश भाई को दिल्ली एम्स में एडमिट करना था। तो हम शाम को कुछ भाई बहनों के साथ मिलकर घर पर गए, और नुमा शाम का समय था, और हम सब ने पहले योग किया, और योग करने के बाद कुछ बातचीत भी की। वो तो भले बातचीत नहीं कर सकते थे लेकिन आत्मा भाव तो समझती है कि हम क्या कह रहे हैं, तो बातचीत हुई। उसके बाद क्योंकि हमारे लिए वो अंतिम विदाई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में फिर बहुत सारे नियम कायदे हैं, मीडिया का बहुत प्रेशर था, तो ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता था कि मीडिया बार बार आना चाहे। फिर हमने उनको तिलक दिया, और तिलक देते हुए जो शब्द हुआ उसमें वो जो शब्द था कि माफ करो और माफी दे दो, तो माफ करने का भाव ये था कि पीछे 13 साल पहले जो घटना घटी, तो आत्मा के अंदर, क्योंकि वो तो बोल नहीं सके, घटना घटी और वो बेहोश हो गए, जब होश भी आया तो भी वो बोल नहीं सके, तो आत्मा के अंदर वो दुख है। अब वो विदाई है तो सबको माफ करना जरूरी है। 13 साल उस आत्मा ने इस शरीर के साथ बहुत कष्ट झेला है, तो कहा कि अब माफ कर दो, और दूसरा था माफी मांग लो। किसी ना किसी जन्म का ही था हिसाब किताब उन आत्माओं के साथ, तो अब उन्हें भी माफ कर दो और इस तन से उड़ जाओ। तो भाव तो यही था कि आपने नियम बनवा दिया है लेकिन आप सहज होके चले जाओ। और उसके बाद शनिवार को उनको दिल्ली एम्स में एडमिट किया, और उसी दिन से संडे से सेवा केंद्र पर फिर 21 दिन की निर्विघ्न भट्टी की गई। और वो निर्विघ्न भट्टी इसलिए रखी गई क्योंकि जैसे ही फैसला आया तो मतें अलग अलग हो जाती हैं दुनिया की भी, क्योंकि उन्हें 13 साल पहले का कुछ नहीं मालूम, या 13 साल माता पिता ने क्या क्या तकलीफें उठाई वो नहीं मालूम, और फिर मीडिया के भी अपने बहुत सारे प्रश्न थे। तो ये रहा कि अब एडमिट तो कर दिया है लेकिन अब सहज रीति ये कार्य हो जाए। तो जैसे ही वो एडमिट हुए सेवा केंद्र पर भट्टी रखी गई, तो तीन टाइम ऐसे रखा गया, 6 से 7:30 बजे तक सुबह 1.5 घंटे की भट्टी रहेगी, फिर 10 से 11:30 और शाम को 4:30 से 7:30। तो इस भट्टी से बहुत फायदा भी हुआ क्योंकि हम सब वहां नहीं पहुंच सकते थे हॉस्पिटल में, तो सबको यही कहा कि सब योग करेंगे। तो सभी ब्राह्मण आत्माएं, चाहे वो वीडियो भी जग गया, वीडियो पता नहीं कैसे वायरल हुआ, वो तो बाबा जाने और ड्रामा जाने, और वो आत्माएं जाने जो जाते जाते बाबा को भी इतना प्रत्यक्ष कर गई, तो वीडियो भी आया। और उस दिन के बाद फिर योग भी शुरू हुआ और 11 दिन के बाद उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। और बहुत सहज रीति से बात भी हम पूछते रहते थे परिवार से, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, कहते दीदी बहुत सहज तरीके से हो रहा है, कोई ऐसे नहीं कि उसको बहुत तकलीफ दे करके, ऐसा नहीं, प्राकृतिक है ना, कईयों को लगा इच्छा मृत्यु माना कुछ ऐसे, तो नहीं, प्राकृतिक होता है, तो प्रकृति की तरह उसको बहुत प्यार से विदाई दी गई। हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से ध्यान से रखा गया और डॉक्टर्स का बहुत अच्छा सहयोग रहा, हॉस्पिटल से जब शमशान पर भी लेकर आए तो आप सब ने वो वीडियो देखा होगा कि दोनों तरफ जहां पर उनको लेकर के आए उस स्थान को भी बहुत सुंदर फूलों से सजाया हुआ था, और जहां पर उनका संस्कार हुआ तो वहां पर भी सजाया हुआ था। तो जिसको कहा कि गरिमा के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई, और अंदर से यही शुभ भावना थी कि अब वो आत्मा का शरीर बहुत पुराना हो गया है और इस शरीर के द्वारा वो आत्मा अभी कुछ नहीं कर सकती। आपने उसमें उनके हिस्ट्री में भी सुना होगा, वो टॉपर थे अपने कॉलेज के और बॉडी बिल्डर भी थे, तो अंदर से यही आया कि अब आप विदाई ले लो और आपको अगला जन्म जो मिले आप कहीं ना कहीं ब्राह्मण परिवार के संपर्क में ही आए और आपको एक स्वस्थ शरीर मिले, आपका हिसाब किताब चुप्त हो जाए। तो ऐसे पूरे ब्राह्मण परिवार ने, सिर्फ ये नहीं कि मोहन नगर या गुलमोहर गार्डन सेवा केंद्र की ओर से ही, लेकिन पूरे विश्व ने, चाहे वो ज्ञान में थे या नहीं, सब लोगों ने उस आत्मा को बहुत दुआएं दी हैं। और ये परिवार बहुत वर्षों से ही ज्ञान के संपर्क में है, लगभग 18 वर्ष, तो उस बच्चे ने भी, हरीश भाई ने भी दादियों की पालना ले रखी है। जब वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गए तो दादी गुलजार से दृष्टि विदाई लेकर के गए थे, और इसलिए वो आत्मा जब गई भी है तो चारों तरफ बाबा को और ब्रह्मा कुमारी को प्रत्यक्ष करके गई है। तो हम ये परिवार 6 तारीख को ही अपने नेटिव प्लेस से आया है, वो सब अपना क्रियाक्रम वगैरह करके, और 7 तारीख को बाबा के घर आए, बाबा को आज भोग लगवाया, बाबा को धन्यवाद किया, और बाबा का बहुत सुंदर संदेश भी आया है। तो उस आत्मा को हम सब ब्राह्मण परिवार का बहुत बहुत नमन है कि वो आत्मा जहां भी जाए बहुत सुखी स्वस्थ उनको शरीर मिले, यही हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि है। और माता पिता की भी हिम्मत है जो उन्होंने ये संकल्प लिया, और सरकार ने इस फैसले का बड़ा सत्कार करके सहयोग दिया। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद रूपा बहन। इसमें एक बात है कि अशोक भाई जी तो है ही मतलब पिता, लेकिन माता ने भी स्वीकृति दी इस निर्णय की, साथ दिया, ये भी अपने
भाई
आप
ने भी
में बहुत बड़ी बात
है। जो भाई 4:30 बजे उठता, सबसे पहले उसको व्हील चेयर पे बिठाता, फिर आयोडीन सॉल्यूशन डाल करके डिप करके, फिर वाइपिंग करनी, वाइपिंग के बाद फिजियोथेरापी करनी, फिजियोथेरापी के बाद दोनों माता पिता, ये माता और वो भाई, वो पूरी उसकी नारियल के तेल से मालिश करनी, बहुत मतलब, क्योंकि यहाँ ट्रोक्सटमी ट्यूब थी, रात को हमें 2-2, 3-3, 4-4 बार संक्शन करना पड़ना जिससे बलगम निकलता, मतलब बहुत सारी परिस्थितियां थी, पर परिस्थितियों ने हमें आधा डॉक्टर बना दिया, क्योंकि उसकी जैसे इन्फेक्शन हो गया तो या तो अमिकासिन इंजेक्शन लगाओ, 500 mg का लवेप्सी चलती थी, लवो क्लोवाजम, एप्टोइन, बैकलो, बहुत सारी दवाएं उसकी चलती थी। मेल कैथ लगा हुआ था, यूरोबैग लगा हुआ था। तो वो ऐसे ऐसे हमें अधिवक्ता मिले और डॉक्टर मिले और इस माता और बेटे का सहयोग सेवा में था। मेरे को तो फीड भी नहीं देने आती थी, क्योंकि जब एम्स में गए तो डॉक्टर भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छी। पहले कॉन्फ्रेंस होनी, हमारी मीटिंग होनी, उसके बाद उन्होंने पूछना आज हम ये काम कर रहे हैं। तो इसको ये नहीं कहते कि जैसे मैंने तो माननीय न्याय मूर्ति जी को ये कहा था कि इसको यूथनेशिया ना शब्द दे करके प्रकृति की गोद में छोड़ रहे हैं हम, भगवान की गोद में, क्योंकि उसका कोई चीजें तो वो किडनी की इंजेक्शन लगाया उसको बोलते हैं, वो दिया ही हुआ है, सब समझते हैं आजकल एक्टिव न्यूज सक्रिय इंजेक्शन, वो तो उसको लगाया जाता है। जो मान लिया एक पागल कुत्ते ने इंसान को काट लिया और वो कुत्ते को फिर इंसान पागल हो जाता तो वो घाते इंजेक्शन लगाते, वैसा कोई प्रक्रिया नहीं हुई। ये बड़ी शांति प्रक्रिया चली 11 दिन तक। 11 दिन के बाद लगभग 2 बज के दिन, पता नहीं 3 बज के 10 मिनट पे उन्होंने, तो ये माँ का और बच्चे का जो सेवा कर रहे थे, मैं तो बाहर के काम देखता था, ये अंदर का आपस में देखो अंडरस्टैंडिंग तो करना ही पड़ती है, ये सब इनका एक योगदान था और इनका ही संकल्प था जो बाबा ने पूरा किया। कैसे कैसे हमें दीदियां मिली, रहते तो हम वहां दिल्ली में थे, 4 मंजिल मकान था, वो बेच के आए यहाँ राजनगर एक्सटेंशन, वहां एम्बुलेंस नहीं घुसती थी, ताज में मैं नौकरी करता था, 33 साल सेवाएं दी वहां। और अब ये गांव में गए तो गांव में भी कम से कम 3,000 लोग 6 दिन में देखने आए होंगे, तो आपको पता ही है जब आना जाना 8-8, 10-10 गाड़ियां, परंतु परमात्मा ने बाबा ने कैसे करवाया पता नहीं। जब इसने शरीर छोड़ा तो प्रोफेसर जो मैंने अभी नाम लिया था सुषमा भटनागर जी, उनके हस्बैंड भी प्रोफेसर एम्स में, और वो भी आज भी फोन आया था, ऑपरेशन कर रही थी वो, तो उन्होंने बोला हमारी कोठी खाली पड़ी है, यहां रहो आप। मैं कहा नहीं जी, किसी के घर पे नहीं। फिर उन्होंने चारों ने गाड़ी भेजी, डॉक्टरों का कोई फैकल्टी गेस्ट हाउस होता वहां पर, माँ बेटा और दामाद वहां रहे और मैं घर गया। घर गया तो वहां 40-50 मेहमान थे। अब आपको पता सोसाइटी में कौन करता है, परंतु बाबा का मैंने ऐसे बोला, मैंने बाबा तू ये इलाज बचाने वाला। इधर से भी पड़ोसी रोटियां ले आए, उधर से भी पता नहीं वैसे ही 30-40 बंदों की रोटियां भी, और बेटी भी वहीं सोसाइटी में रहती है तो फ्लैट सोने साने का भी बंदोबस्त सब हो गया। तो मैं तो किन शब्दों में, वो गाना है ना कि तू दिखता नहीं है, परंतु ये कैसे कैसे किसके द्वारा क्या क्या करवाता हूँ। वो सोसाइटी वाले उन्होंने भी इतना सहयोग दिया, मैं पूछो मत, 7-8 गाड़ियां उनकी हो गई। मैं कहा नहीं नहीं 3-4 अपने रिश्तेदारों की हो गई थी जाने के लिए, क्योंकि हमने वो शमशान घाट हुई तो उसी डॉक्टर ने वो SHO को फोन किया, वहां पुलिस प्रशासन भी, परंतु फिर भी मीडिया वाले पहुंच गए थे। परंतु जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होता है वो अच्छा ही होता है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। परमात्मा हमें हिम्मत दे, शक्ति दे, और आपको भी सबको कोई कठिनाई आती है तो ये नहीं सोचना कि हमें ये दुख आया। दुख कुछ सिखा के जाता है, हमें मजबूत करके जाता है, हमारी विल पावर मजबूत करता है वो, हमारा इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो मैंने तो इस परिस्थिति में यही सीखा है और परमात्मा ने मेरी बहुत मदद करी है। और मैं जब से चला हूं ना, मेरे परिवार वालों को भी नहीं पता, बाबा के घर थोड़ी सी सेवा जरूर आती है, तो बाबा भिजवाता है, बाबा करवाता है, जो भी मैं कमाता हूँ उसमें से सेवा सेंटर में भी जाती है। वहां की दीदियां भी आई, टेम्पो ट्रेवलर आया भर के, उन्होंने बेचारी भोग ले आई वहां कस्टर्ड वगैरह लास्ट दिन जब क्रिया थी 11वें दिन। तो ये बाबा का कमाल है, हम तो कुछ जानते नहीं। हाँ, हमारे से जो सेवा होती थोड़ी बहुत वो करते रहते। धन्यवाद। ओम शांति।
तेरह साल का लंबा सफर है ना, इसलिए भाई जी के मन में बहुत भावनाएं हैं, और हम सभी अपनी फैमिली बैठे हैं ना उनके सामने, इसलिए वो बहुत भावनाएं भर भर के हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। अभी हम सबके मध्य लवली बहन अपना अनुभव सुनाएंगे, क्योंकि इस सफर में कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ न कुछ श्रीमत कहें, बाबा ने जो दिया ही है वो श्रीमत आप निमित्त बन के सुनाते होंगे, ज्ञान उनके लिए योग करते होंगे, सकाश देते होंगे। तो हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप अपना अनुभव हमारे मध्य रखें।
ओम शांति। ये तो एक स्पेशल ही कुछ ड्रामा में ऐसा पार्ट हुआ कि हम अगर पन्ने पलटते हैं तो हमको समझ नहीं आता है ये कैसे क्या है, लेकिन इसमें बाबा की कोई ना कोई आगे सेवा समाई होगी। 3 साल पहले की बात है, बाबा को कहा कि भोग लगवाएंगे मधुबन में जी। अपने संकल्प हम बाबा को कई तरह से बताते तो हैं ही, एक बहुत सुंदर माध्यम है। तो हमने कहा मधुबन जा रहे हैं, बाबा से बात करनी है भोग में। तो फिर भाई जी ने कहा हाँ मेरा भी संकल्प ये कहना। तो बाबा का जो संदेश आया था, बाबा ने संदेश में कहा कि बच्चे को, क्योंकि यही था कि लगभग 11 साल हो, 10 साल पूरे हो गए थे, तो अब जो है इनको थोड़ी जैसे होते ना अंदर से संकल्प उठते थे क्या करूं, मुझे तो किसी ने कहा था कि 10 साल में ये ठीक हो जाएगा, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने, क्योंकि इन्होंने हर जगह कोशिश की होगी जरूर, इतना लंबा समय है और हर प्रकार से की होगी। तो अंदर में संकल्प आया तो मैंने कहा बाबा से हम पूछेंगे, जो बाबा कहेगा वो फिर हम आपको बताएंगे। तो बाबा का संदेश था कि बच्चे के मन में संकल्प में देते जाओ, वातावरण योगयुक्त होना चाहिए और उसको संकल्प दिया जाए कि ये शरीर तुम्हारा पुराना हो गया है, अब इस शरीर को तुमको छोड़ना है। ये संकल्प बार बार उसको, उसके आसपास वाले तो जरूर दें और योग करें, बाकी सेंटर पर भी योग किया जाए। तो इसलिए वो सब मैं समझती हूँ, वो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन उस माँ के साथ जुड़ा, उस बात का कि माँ के अंदर ये संकल्प उत्पन्न हुआ और माँ ने ये हिम्मत का संकल्प जब किया तो फिर ये आगे प्रोसेस हुआ। मुझे लगता है उसके बिना भी ये केस आगे बढ़ ही नहीं सकता था, क्योंकि पिता भी थोड़ा सा एक कदम दूर ही होता है। माँ का जो संकल्प है उसके कारण ही ये प्रसिद्ध हुआ। और जिस दिन हॉस्पिटल जाने से पहले तिलक लगाया गया रूपा बहन के द्वारा और कुछ भाई बहन वहाँ योग भी कर रहे थे, तो अगले दिन हमको था कि कहीं हॉस्पिटल जाने से पहले कोई भाई बहनों का संकल्प होता है वो उनके घर ना पहुंचे और फिर और ज्यादा रश ना हो। तो फिर हमने कहा कि हम ना सब क्लास में रेगुलर आते हैं, उस दिन भी आए थे, हॉस्पिटल जाना था उस दिन भी पहुंचे थे, क्लास कभी नहीं छोड़ते, ये विशेषता है। तो ये सबसे मिलके जा रहे थे तो मैंने कहा मैं आपकी तरफ से उसको एक विदाई का एक वीडियो ग्रुप में भेजूंगी। तो ग्रुप में जैसे वीडियो हमने भेजा तो अगले ही दिन रात के, मतलब रात पूरी हुई है और ये वीडियो सब जगह कैसे गया है और फोन आने शुरू हो गए, मधुबन से भी आया कि ऐसे ऐसे लोग फोन कर रहे हैं पत्रकार और चैनल वाले। तो अंदर से थोड़ा भय सा लगा, मैंने कहा कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की, ये क्या हुआ है, ये मतलब हम लोग दिखे, दीदियां दिखती हैं बड़ी, बड़े लेवल पर कोई प्रोग्राम होता है तो दिखाई दे तो अच्छा है, ये कहीं कुछ गलत तो नहीं है ना, ऐसे अंदर में चेकिंग होती है। तो समझ नहीं आ रहा था क्या, लेकिन फिर कहा, चाहे मधुबन से भी फोन आया कोमल भाई का, नहीं सेवा समझो और बाबा आपको आगे कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई चैनल वाले आ रहे थे तो पूछते थे कि हमें मिलना है, तो हमने कहा देखिए वो तो हॉस्पिटल चले गए, अब हमें किसी से नहीं मिलना, हम क्या करेंगे मिलकर, नहीं नहीं हमें मिलना है, या केस क्या चल रहा है। ये पिछले 11 तारीख से शायद हुआ था ना, 13 मार्च को ये जब केस का सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस सुनाया गया था तब से बार बार आए। हमने कहा हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आप हमसे क्या पूछोगे। कहा नहीं 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 बस हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, उनसे तो हमने पहले से पूछा हुआ है। हमने कहा हम क्या कहें, मतलब इसमें तो पहले बातचीत कर लेते थे, वो लोग हमको थोड़ा लाइट करते थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो जुड़े हुए हैं ब्रह्मा कुमारी से। ये बात उस वीडियो के माध्यम से बाहर गई है और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सिखाते हैं आप। तब फिर बाबा ने अंदर से अनुभव कराया, बच्ची ये सेवा है, आप इस सेवा को स्वीकार करो। और फिर उनके सामने आना शुरू किया और उनको जवाब जो जो पूछते जाते थे वो हम देते जाते थे, कि कोई भी शब्द बस बाबा की सेवा का ही हो, क्योंकि वो यही बाहर की दुनिया यही जानना चाहती है कि ये ब्रह्मा कुमारी से जो जुड़े हैं इससे ही इनमें इतनी शक्ति आई, चाहे परिवार संभालने के निमित्त बना, एकता में रहा और इतने लंबे समय से ये सब कुछ पार करके और इस निर्णय को करने की हिम्मत जुटा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ कुछ सिखाया जाता है। आप हमें सिर्फ यही बताओ कि यहाँ क्या बताते हो आप, या मेडिटेशन में क्या है मेडिटेशन, तब समझ में आया कि ये बाबा की एक सेवा वो आत्मा निमित्त बन करके करके गई है, तो फिर उसको स्वीकार किया। और अभी भी लगातार फोन आते हैं कि अब आप माउंट आबू से कब आ रहे हो, तो हमें एक शूट और चाहिए, एक ये चाहिए। कई बार तो एक बार मुझे याद है रात को 9 बजे वो कहते हैं कैमरामैन नीचे खड़े हैं, उनको 5 मिनट आपसे बात करनी है। मैंने कहा मैं स्टीम ले रही थी सचमुच, मैंने कहा हमने कल तक तो दिया है, अब तो बस सब कुछ हॉस्पिटल में हो रहा है। कहा नहीं, तो फिर मैंने मना कर दिया। बाकी तो जितने भी आते थे हम चाहे कम से कम टाइम भी देते थे, पर ऐसा लगता था कि बाबा अपनी सेवा करा रहा है इस परिवार और इस केस के माध्यम से। वो सेवा हुई, चैप्टर आगे बढ़ गया, यही हम समझते हैं।
बहुत बहुत आभार लवली बहन जी का, और एक जो निर्मला बहन है उनके लौकिक माता जी, आप सबको एक बात बताते हैं कि जब हरीश भाई जी का ऐसे एक्सीडेंट हुआ तो 13 इयर्स वो पीरियड था, तो 13 इयर्स के बाद माता जी मधुबन आए हैं ना। ये एक माँ का कितना बड़ा त्याग और कितना बड़ा साथ। तो ऐसे परिवार के लिए फिर से एक बार अपनी शुभ भावना शुभकामना देंगे, और हरीश भाई जी के लिए फिर से दुआएं देंगे। तो हम अपने श्रद्धा सुमन कहें या वो ब्लेसिंग्स कहें, अभी योग युक्त होकर बैठेंगे आप सभी मंच पे जो भी हैं, अशोक भाई जी, निर्मला बहन जी और हमारी दोनों बहनें लवली बहन और रूपा बहन, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हम सबके मध्य अपना अनुभव आपने बहुत खूबसूरती के साथ रखा। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठकर उस आत्मा के प्रति अपनी ब्लेसिंग्स देंगे, और इन आत्माओं को भी वो फिर से हिम्मत और साहस रखने के लिए शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति। हम सबके मध्य हमारे आदरणीय श्रीकांत भाई जी भी आएंगे, वो भी योग में अपनी ब्लेसिंग्स उस आत्मा के प्रति देंगे।
ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज।
जन्म जन्म की प्यास बुझा ले पावन बन सरकार।
योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा।
संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं
तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज।
संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं
अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज।
सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज।
योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा।
शांति। सभी ने बहुत सुंदर अनुभव सुना और स्पार्क के अंदर ये विशेषता है कि कंटिन्यू हम बहुत अच्छी बातें सुनते रहते हैं और बहुत अच्छी तपस्या भी करते हैं। तो स्पार्क के अंतर्गत बहुत भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट्स साल भर चलते रहते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के द्वारा हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर पाते हैं। हम देखते हैं हर साल अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं और अलग अलग ग्रुप्स के अंदर पुरुषार्थ की नवीनता के साथ हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति करते रहते हैं। तो इस वर्ष भी एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट लेकर हमारे मध्य आ रहे हैं हमारा महाराष्ट्र का ग्रुप, जिसमें हमेशा से ही हमारे आदरणीय अलका दीदी जी हमें लीड करते हैं। तो मैं हमारे आदरणीय अलका दीदी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी।